हैरत है। आप जानते हैं कि मेरा एक छोटा सा नजरिया है, बिल्कुल इस तरह कि जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो लोगों को खड़े हुए देखूं। क्या आप इसे पसंद नहीं करते? हम अहद की अतायत में खड़े हो जाते हैं और अपनी कौम के लिए खड़े हो जाते हैं, तो फिर अब आप कलाम मुकद्दस के लिए क्यों नहीं खड़े होते? अब जबकि हम एक मिनट के लिए खड़े हुए हैं, तो मैं एक मुरासला पढ़ रहा था। इस बात को कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा और मैं गुजरी रात सोच रहा था उन लोगों के लिए जो मसीह के लिए खड़े हुए, और अगर आप मसीह के लिए अभी तक खड़े नहीं हुए तो फिर आज आप किस तरह खड़े होंगे। तकरीबन 75 साल हुए कि एक अजीम मुबशर था, मैं उसका नाम जरा बेहतर याद नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका नाम आर्थर मिकॉय था और वो इस सरजमीन से अब कूच कर चुका है। और एक रात उसने एक ख्वाब देखा और वो ऊपर जलाल में चला गया, और उसने बताया कि जब वो ऊपर फाटक पर पहुंचा और उसने बताया कि ऊपर उन्होंने उसे फाटक के अंदर दाखिल ना होने दिया और कहा, उसने कहा, मैं आर्थर मिकॉय अमेरिका से हूं और मैं एक मुबशर हूं। बस फाटक का मुहाफिज अंदर गया, अब ये ख्वाब था, और वो मुहाफिज अंदर गया और उसने कहा, मैं तुम्हारा नाम कहीं भी तलाश नहीं कर सका। मुबशर ने कहा, ठीक है, मगर मैं एक मुबशर था। मुहाफिज ने कहा, जनाब मैंने, मुबशर ने कहा, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा इम्कान है कि यहाँ कुछ गलत हो? मुहाफिज ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जनाब, मेरे पास यहाँ किताब मौजूद है और मैं इसमें कहीं भी आपका नाम तलाश नहीं कर पाया। और मुबशर ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या मैं इसके मुतालिक कुछ कर सकता हूँ? मुहाफिज ने कहा, आप सफेद तख्त की अदालत में अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं। ऐ खुदा, मदद करना, मैं वहाँ नहीं होना चाहता। मुबशर ने कहा, ठीक है, अगर सिर्फ यही मेरी उम्मीद है तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं अपने मुकदमे के लिए अपील करूँगा। और बताया कि तब उसने सोचा कि वो उस राह से दूर निकल गया, और जरा और जैसे ही उसने जाना शुरू किया तो उसने कहा कि तारीकी ही तारीकी थी और फिर आगे रोशनी ही रोशनी पाई, और उसने कहा कि ये बिल्कुल इस तरह मालूम होती थी कि वहाँ कोई खास मकाम नहीं था जहाँ ये रोशनी रुकती, लेकिन वो उस मकाम के बिल्कुल दरमियान खड़ा था। और एक आवाज ने उससे कहा, कौन है जो मेरे तख्ते अदालत में पहुँचा है? मुबशर ने कहा, मैं आर्थर मिकॉय हूँ, एक मुबशर हूँ, और मैंने बहुत सारी जानों को खुदा की बादशाही में भेजा है। उस आवाज ने कहा, क्या तुम्हारा नाम किताब में नहीं पाया गया? उस मुबशर ने कहा, नहीं जनाब। उस आवाज ने कहा, तो फिर क्या तुमने अपना मुकदमा मेरी अदालत में दर्ज कराया? जी हाँ जनाब। ठीक है, तो फिर तुम इंसाफ हासिल करोगे, मैं अपने कानून के जरिए तुम्हारा मुंसिफ हूँ। आर्थर मिकॉय, ये बताओ, क्या तुमने कभी झूठ बोला था? मुबशर ने कहा, मैंने सोचा कि मैं तो एक अच्छा और साफ इंसान था, इसलिए तो अब तक नूर में खड़ा हूँ। उसने कहा, लेकिन मैं उस नूर की हजूरी में एक गुनाहगार था। हम सब भी वहाँ ऐसे ही होंगे। हो सकता है कि अब आप अपने आप को महफूज कर सके, लेकिन इंतजार करें तब तक जब आप वहाँ आते हैं, जबकि वो यहाँ मसा दे रहा है, तो आप उसके मुतालिक क्या सोचते और कैसा महसूस करते हैं? तो आप कितना कमतर महसूस करते हैं, तो फिर ये सफेद तख्त की अदालत में कैसा होगा? उसने कहा, मुबशर, क्या तुमने कभी झूठ बोला? मुबशर ने कहा, मैंने सोचा कि मैं तो सादिक रहा था, लेकिन कुछ थोड़ी सी बातें ऐसी थी कि मैंने सोचा जो कि सफेद झूठ था, वो झूठ बड़े और तारीख बन गए। मुबशर ने कहा, जी हाँ जनाब, मैंने झूठ बोला था। उसने कहा, क्या तुमने कभी चोरी की? मुबशर ने कहा कि मैंने दिल में सोचा कि मैं तो चोरी के मुतालिक ज्ञानदार रहा था और कभी चोरी नहीं की थी, लेकिन कहा, इस नूर की हजूरी में मैं महसूस करता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि जरा भी दुरुस्त नहीं थे। मुबशर ने कहा, जी हाँ जनाब, मैंने चोरी की। तो मुनसफ ने कहा, मेरी अदालत, और अभी वो मुबशर उसके इस फिक्रे को सुनने के लिए तैयार था, इसे हमेशा की आग में डाल दो जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, जहाँ हर हड्डी अलहदा होती आ रही थी। मुबशर ने कहा, तब मैंने मिठास भरी आवाज सुनी जो कभी मैंने अपनी जिंदगी में सुनी हो। उसने कहा, जब मैं उसे देखने को मुड़ा तो मैंने एक नहायत खूबसूरत चेहरा देखा जो मैंने कभी देखा हो, माँ से भी ज्यादा बढ़कर, मेरी माँ से भी बढ़कर मिठास भरी आवाज जिसने मुझे कभी बुलाया हो। मुबशर ने कहा, मैंने अपने गिर्द देखा और एक आवाज को सुना जिसने कहा, ए बाप, ये सच है कि इसने झूठ बोला और वो दयानतदार न रहा, लेकिन जमीन पर वो मेरे लिए खड़ा हुआ और कहा, अब इस मुबशर की जगह मैं खड़ा होता हूँ। और यही है जो मैं चाहता हूँ, जो वहाँ हुआ, अब मैं उसके लिए खड़ा होना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो आएगा तो वो मेरी जगह खड़ा होगा। आए पदेश 22 बाब से पढ़ते हैं, 15, 16, 17 और 18 आयत तक। और खुदावंद के फरिश्ते ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा, खुदावंद फरमाता है कि चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेक न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समंदर के किनारे की रेत की मानिंद कर दूंगा और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आइए हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप, अब इस कलाम को ले और खुदावंद हमारी जरूरियात को पूरा कर दे। खुदावंद अता कर के रूल कुछ कलाम को हर दिल तक ले जाए जो इस सपहर हमारी तोकोआत को पूरा करे, क्योंकि खुदावंद तू अजीम है और ए खुदावंद तूने हमसे कहा कि कसरत से मांगो ताकि हमारी खुशी पूरी हो जाए। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप बैठ जाएं। अगरचे मैं कुछ लम्हों के लिए इस कलाम को बयान करना चाहता हूँ वो मेरी आवाज ठीक नहीं है, यही वजह है कि मैं माइक्रोफोन के करीब खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये आवाज की बाजगश्त भी होती है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए इसे बर्दाश्त करेंगे और मैं इस मजमून को इस नाम से पुकारना चाहता हूँ, आजमाइश के बाद दुश्मन के फाटक का मालिक होना। हमारा मंजर इब्राहिम के सबसे ज्यादा हैरान कुन मनाजर में से एक पर खुलता है और आप जानते हैं कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप है और इब्राहिम से वादा किया गया था और उसके साथ मसीह के वसीले वरासत का हक रखते हैं। सिर्फ यही रास्ता है कि हम इब्राहिम के वसीला से उसके वादा को हासिल करें। अब इब्राहिम एक मामूली सा आदमी था, लेकिन वो खुदा की तरफ से बुलाया हुआ था और इस बुलाहट में वफादार रहा। जब खुदा ने उससे कलाम किया तो इब्राहिम ने एक दफा भी उसकी आवाज पर शक ना किया, वो उसके साथ कायम रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी मुश्किलात थी, वो ठीक उसके साथ खड़ा रहा और फिर उसने एक बेटे का वादा भी किया था और उसने उस बेटे को हासिल करने के लिए 25 साल इंतजार किया, बल्कि हर चीज बरक्स थी मगर उसके लिए ऐसे जैसे कुछ नहीं। और फिर इसी बेटे में से जमीन के सब कबीलों ने बरकत भी पाई और बुजुर्ग इब्राहिम अपनी बुलाहट और वादे के कलाम के साथ वफादार रहा। वो एक मिसाल था कि हमें क्या होना चाहिए। अब हम मसीह में दफन होकर इब्राहिम की नस्ल हैं। चूंकि इब्राहिम की दो नस्लें थी, उनमें से एक जिस्मानी नस्ल और दूसरी रूहानी नस्ल। उनमें से एक उसके जिस्म के वसीला से जिस्मानी और दूसरा ईमान के वसीला से रूहानी। वो ईमान जिस वादे के कलाम के वसीला हम इब्राहिम के तुख्म होते हैं। अब 25 साल के लंबे अरसे की आजमाइश के बाद और अब कमजोर होने की बजाय वो ताकतवर हो गया। देखें, अगर ये पहले साल में ना होता तो ये अगले साल बड़ा मौजजा होता, क्योंकि ये 2 साल पुरानी बात होती। और जो ही वो बूढ़ा हो गया, उसने सालों के ढेर लगा दिए और उसका बदन खत्म हो गया और सारा का रहम और वो रहम वो मुर्दा हो गया था और ये बांझपन था और इब्राहिम की कुव्वत भी खत्म हो गई थी और इसलिए ये बात बिल्कुल नामुमकिन थी। क्या आपने कभी सोचा कि खुदा ने वहाँ क्या किया? देखें, उसने इससे बढ़कर कुछ नहीं किया कि उसके रहम को जरखेज कर दिया। इसलिए याद रखें, उसने ऐसा किया तो फिर याद रखें, उसने ऐसा किया। उनके पास अच्छी सेहत और साफ सुथरी बोतलें ना थी। उन दिनों में बच्चों को गाय से दूध पिलाया जाता था, समझे? खुदा को भी तो कुछ करना था। उसकी बीवी की दूध की नसें खुश्क हो गई थी और उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ कुछ होना था। फिर 100 साल औरत को देखें कि वो दर्दे जे में चली गई। उसके दिल ने भी इसे बर्दाश्त नहीं करना था। ये तो 40 साल की एक औरत के लिए भी मुश्किल होता है। कि ऐसा करे, उसका दिल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? अगर आप गौर करें, अब मैं समझता हूं कि बहुत सारे इस बात से मुत्तफिक नहीं हो सकते। क्या इस बयान को पेश करते हुए ये सब ठीक है? तो देखें, ये मेरी अपनी सोच होगी। देखें, बाइबल मुकद्दस एक माफूकुल फितरत किताब है। ये इसलिए लिखी गई कि इसे थियोलॉजियन स्कूलों से छुपाया जाए। कितने इस बात को जानते हैं? यीशु ने खुदा का शुक्र किया और कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को अक्लमंदों और दानाओं से छुपाया और बच्चों पर जाहिर किया। ये मोहब्बत की किताब है। जब खुदा की मोहब्बत आपके दिल में आती है, तब आप खुदा से मोहब्बत करते हैं। फिर वो अपने आप की बाइबल के वसीला तर्जमानी करता है। बाइबल मुकद्दस की तर्जमानी से खुदा बजाते खुद अपने वादों की तशरीह करता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस को तरतीब से लिखा गया है। अब मेरी बीवी की तरह, ओ, वो सबसे ज्यादा दुनिया में काबिले तारीफ है और मैं सचमुच उससे प्यार करता हूँ। वो भी मुझसे प्यार करती है, लिहाजा जब मैं घर से दूर होता हूँ तो वो मुझे खत लिखती है और कहेगी, प्यारे बिल, आज रात अभी ही मैंने बच्चों को सुलाया है, मैंने धुलाई का काम कर लिया है और जो कुछ भी उसने करना था वगैरह वगैरह। और अब वो खत में ये बयान कर रही है, मगर आप देखें, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, हम किस कदर एक हैं। मैं इन सत्रों के दरमियान ही पढ़ सकता हूँ कि वो क्या कहना चाहती है, समझे? का वो मुझसे ये कहे या ना कहे, समझे? मैं जानता हूँ कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि ये मेरी उसके लिए मोहब्बत है और मेरी उसके साथ ज़हनी हम हांगी है। ठीक है, इसी तरीके से बाइबल मुकद्दस भी लिखी गई है, समझे? ये इल्म तो बिल्कुल उनके ऊपर से गुजर जाएगा, फिर भी वो नहीं समझेंगे, समझे? आपको कलाम के साथ उससे मोहब्बत होनी चाहिए ताकि उसे जान लें, समझे? अब यहाँ पर देखें, उसने क्या किया? अब इब्राहिम और सारा दोनों ही काफी बूढ़े हो गए थे और बाइबल मुकद्दस फरमाती है बहुत ही कमजोर थे। अब उनकी वजह ये नहीं थी कि वहाँ लोग ज्यादा देर तक जिंदा रहते थे। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो उम्र रसीदा होने की वजह से कमजोर थे। अब गौर करें, फौरन ही इसके बाद फरिश्ता दिखाई दिया जिसके मुतालिक आप गुफ्तगू करते रहते हैं, जो कि एलोहिम खुदा था, और उसने इब्राहिम को बताया कि मैं तेरे जीते जी तेरे पास आ रहा हूँ। अब शुरू से आखिर तक गौर करें तो वो एक कलीसिया की मिसाल थे। अब देखें कि यहाँ क्या हुआ। अब उसने सारा और इब्राहिम में पैवंदकारी नहीं की, उसने उनको वापिस एक जवान मर्द और औरत बना दिया। अब ये कदरे अजीब सा लगता है, लेकिन अब बाकी कलाम पर ध्यान दें और इसे यकजा करें। कलाम पुर तहरीक है और आप भी कलाम की तहरीक से भर जाएंगे। अब याद रखें, फौरन ही इसके बाद उस फरिश्ते ने दिखाई देने के बाद फौरन ही मैं इस वक्त देख सकता हूँ कि सारा के बाल सफेद हैं, ये छोटी सी दादी माँ जिसके कंधे पर शाल और एक छोटी मैली सी टोपी है, जो एक छड़ी पकड़कर इधर उधर घूम रही है और कह रही है कि मैं अपने खुदावन से खुश हूँ। क्या इस उम्र में भी वो खुदावन से खुश है, समझे? और वहाँ इब्राहिम लंबी दाढ़ी के साथ अपने हाथ में लाठी पकड़े हुए उम्र के उस हिस्सा में था जो बिल्कुल उम्र का मुर्दा हिस्सा था, और मैं देखता हूँ उससे अगली ही सुबह उसके कंधे सीधा होना शुरू हो गए, उसका कुबड़ापन भी खत्म हो गया, उसके बाल भी सफेद से काले हो गए और वो दोबारा से एक जवान मर्द और औरत में तब्दील हो गए। बस यही जाहिर करने को कि इब्राहिम की शाही नस्ल से क्या करने वाला है, समझे? जब पलक झपकते ही हम एक लम्हे में तब्दील हो जाएंगे और फिर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। गौर करें, ये क्या हुआ? अब मुझे ये आपके सामने साबित करना है। अब जिस जगह पर वो थे, यानी अमूरा से, उन्होंने अपना सफर शुरू किया और वो सीधा जरार की तरफ गए, जो कि वहीं फलस्तीन की सरजमीन में है। क्या आपने गौर किया? नक्शे पर इसकी निशानदेही करें कि ये कितना दूर है। इस उम्र सीधा मियां बीवी के लिए इस किस्म का सफर काफी मुश्किल था। और फिर इसके अलावा उस फलस्तीन की सरजमीन में अमालिक नाम एक नौजवान बादशाह था और वो बीवी तलाश कर रहा था, और उसके पास तमाम फलस्तीनी खूबसूरत लड़कियां थी, लेकिन जब उसने दादी अम्मा को देखा, उसने कहा कि वो देखने में अच्छी है और उसे उसके साथ मोहब्बत हो गई और उसने चाहा कि उससे शादी कर ले। ये ठीक है, जी हाँ, देखो वो खूबसूरत थी, समझे? और वापिस एक नौजवान औरत में बदल गई थी। गौर करें कि उसने उस बच्चे को जन्म देना था, खुदा ने उसे एक नई मखलूक बना दिया था क्योंकि उसने उस बच्चे की परवरिश करनी थी। और याद रखें, इब्राहिम उसका जिस्म इतना बेजान होकर भी इतना अच्छा था, कि जब सारा मर गई, इब्राहिम इसहाक 45 बरस का था। मुझे यकीन है जब सारा मर गई और फिर इब्राहिम ने एक दूसरी औरत के साथ शादी कर ली और उसके बाद बेटियों के अलावा उसके साथ बेटे भी थे। वाह क्या खूब, आमीन। देखें और गौर से पढ़ें और समझें, ये एक मिसाल है। ये जाहिर करती है कि वो इब्राहिम की सारी औलाद के साथ क्या करने वाला है। हम तकरीबन अब बिल्कुल इसके करीब तरीन हैं। लिहाजा दोस्तों, हमारे झुके हुए कंधों और इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और हमारे बाल सफेद या जो कुछ भी है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हम पीछे नहीं देखते, चलें आगे देखते हैं कि हम क्या बनने वाले हैं। और याद रखें, ये निशान जो कि हम देख रहे हैं वो एक आखिरी निशान था जो कि इब्राहिम और उसकी बीवी सारा ने देखा कि इससे पहले वादे का फर्जंद उनके सामने वजूद में आ गया। हम यकीन करते हैं कि हम इस वक्त में हैं। उस लड़के की पैदाइश के बाद वो कबीले का बुजुर्ग बना। क्या आप तस्वीर कर सकते हैं कि इसहाक जो कि एक 12 बरस का लड़का था, जिसके प्यारे से गुंगरियाले लड़कों वाले बाल, छोटी सी भूरी रंग की आंखें, ये किसकी मानी थी? मैं तस्वीर कर सकता हूँ कि वो अपनी माँ की तरह लगता होगा, जो खूबसूरत नौजवान औरत थी, और इसी तरह उसका बाप भी था। और एक दिन खुदा ने फरमाया, अब मिसाल के तौर पर वो वक्त आने को है कि हम जुदा हो जाते हैं। मैंने इस लड़के के वसीला से तुझे कौमों का बाप बनाया है, मगर मैं तुझसे ये चाहता हूँ कि तू इस लड़के को उस पहाड़ के ऊपर ले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे ये चाहता हूँ कि तू इसे कुर्बानी के लिए वहाँ मज़बा पर ज़बा करे। क्या आप ऐसा तसव्वुर कर सकते हैं? अब इससे पेशतर कभी भी नहीं कहा गया है कि इस तरह के इम्तहान में से गुजरो। उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था, ये एक मिसाल के तौर पर अक्स था। क्या इब्राहिम खौफजदा हुआ? नहीं जनाब, इब्राहिम ने कहा कि मैं पूरी तरह इस बात का यकीन करता हूँ वो इसे मुर्दों में से जिंदा करने के काबिल है, चूँकि मैंने इसे मुर्दों में से ही पाया, और अगर ये हुक्म उस खुदा का है जिसने मुझे ऐसा करने को कहा है तो फिर मुझे इसमें सच्चा ठहरना है, मुझे इसे पूरा करना है। खुदा जिसने मुझे बेटे की सूरत में ये बख्शा है, खुदा उसे मुर्दों में से जिंदा करने के काबिल है जिस सूरत के मैंने उसे हासिल किया। ओ मेरे दोस्तों, अगर खुदा आपको पेंटिकोस्टल वाला रूह को सता करता है जिससे आप गैर जुबानों में बोलते हैं, तो आपको इसकी शिफाया कुदरत, नेकी और रहम पर कितना ईमान रखना चाहिए। अगर उसने मुल्क के तमाम आलमुल दीन के खिलाफ ऐसा किया तो उन्होंने कहा ये नहीं किया जा सकता, मगर खुदा ने ये किया क्योंकि उसने इसका वादा किया था। अपनी बंदूक को लेकर, अपने कलाम के साथ, अपनी तलवार को लेकर खुदा के कलाम पर यकीन रखते हुए खड़े हो जाइए। खुदा ने इसी तरह फरमाया और ये इसी तरह कायम है। गौर करें, इब्राहिम ने इसहाक को लिया और गधे पर 3 दिन का सफर किया। मैं तो अब भी चल सकता हूँ। जब मैं बाहर गश्त पर होता था तो मैं हर रोज 30 मील तक पैदल बियाबान में से जाता था, और इसी तरह बातें करते हुए हम पैदल ही पेट्रोल लाया करते थे। लेकिन उन आदमियों की नकलो हमल का वाहिद जरिया या तो गधे पर सवारी था या पैदल चलना। उसने उस जगह से जहाँ पर वो था 3 दिन का सफर किया, और फिर उसने अपनी आंखें उस बियाबान में से उठाई और एक पहाड़ को देखा। उसने इसहाक को लिया, उसके हाथों को बांधा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पैदाइश 22 बाप में मसीह की एक मिसाल थी। इसहाक को बांधकर पहाड़ पर ले जाया गया, इसी तरह यसु को पहाड़ पर कोए कलवर पर ले जाया गया, बेशक जो कि खुदा के अपने बेटे को बख्शने की एक मिसाल थी। लेकिन जब वो वहाँ ऊपर पहुँचे तो वहाँ भी वो फरमा बरदार रहा, मगर फिर इसहाक को थोड़ा सा एक तरह का गुमान होना शुरू हुआ। उसने कहा, ए बाप, यहाँ लकड़ियाँ तो हैं, कुर्बान गाह भी मौजूद है और आग भी मौजूद है, लेकिन कुर्बानी कहाँ है? और इब्राहिम अपने जहन में सब कुछ जानता था, मगर वो अब भी खुदा के कलाम के साथ खड़ा था। उसने कहा, मेरे बेटे, खुदा इस काबिल है कि वो कुर्बानी खुद मुहैया करेगा। उसने उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा, और जब उसने अपने बेटे को बांध दिया तो तब भी वो मौत के सामने फरमा बरदार रहा। उसे मज़बा पर रख कर उसने म्यान में से छुरी निकाली और उसने अपने बेटे की जिंदगी लेनी चाही, और जब उसने ऐसा करना चाहा तो किसी ने उसका हाथ पकड़ कर उससे कहा, इब्राहिम अपना हाथ रोक ले। और इसी वक्त एक मेंढा बिल्कुल उसके पीछे जाड़ी में उद्दम मचा रहा था, और जिसके सिंह जाड़ी के अंदर फंसे हुए थे। क्या आपने कभी सोचा कि ये मेंढा कहाँ से आया? याद रखें, वो सरजमीन शेरों, भेड़ियों, गिदड़ों और इस किस्म के फाड़ खाने वाले जानवरों से बरी थी जो मेंढों को फाड़ खाते थे, और उसके पीछे तहजीब बहुत दूर थी, और फिर उस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर जहाँ पानी भी नहीं था, और उसने चारों तरफ से पत्थर इकट्ठे किए और मजबा बनाया, लेकिन वो मेंढक कहाँ से आया? देखें, मगर ये रोया नहीं थी, उसने मेंढक जबा किया, उसका खून बहा था। इब्राहिम ने क्या कहा? खुदा खुद अपने लिए कुर्बानी मुहैया करेगा। अब आप कैसे उस कुर्सी को छोड़ने जा रहे हैं? कैसे वो तिशन का बीमार बच्चा शिफा याब होगा? आप कैसे उस कुर्सी से और दिल की तकलीफ से निजात पाएंगे? जो भी मसला है, खुदा खुद मुहैया करने वाला है। इब्राहिम इस बात पर ईमान रखता था। कबीले का बुजुर्ग वादे में सच्चा ठहरा और खुदा ने ये वादा किया था कि तेरी नस्ल, क्योंकि तूने मेरे कलाम का यकीन किया और हालात को मद्देनजर ना रखा, तेरी नस्ल अपने दुश्मन के फाटक की मालिक होगी। ऐसा क्यों है कि हर दुश्मन जो एक सूरत में इब्राहिम के खिलाफ होकर सामने आया? इब्राहिम का दुश्मन सारा भी बहुत बूढ़ी है और मैं भी बूढ़ा हूँ और ये सब और इसके अलावा सब कुछ दुश्मन था, लेकिन वो अब भी उस वादे की सच्चाई के साथ खड़ा था। अब वो आदमी जो उस पुख्ता ईमान का मालिक था, अब भी वो खुदा के कलाम को हालात को एक तरफ रखकर थामे रहेगा। अब अगर आप ऐसा ना कर सकें, तो आप इब्राहिम की नस्ल से नहीं हैं। यही वो ईमान है जो इब्राहिम और उसकी नस्ल का था। इब्राहिम से वादा उसकी नस्ल का था। अब इसी तरह शाही नस्ल भी है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और ये मोहर जो उसने इब्राहिम को दी थी, वो वादा की मोहर थी। और शाही नस्ल इफिसियों 4:30 के मुताबिक रूल कुछ से मोहर शुदा होने के बाद वो अजमाइश में खड़े रहे। इसके बारे में सोचने की कोशिश करें। बहुत सारे ख्याल करते हैं कि उन्होंने रुलकुस पा लिया और बहुत से रुलकुस रखने का दावा करते हैं। बहुत सारे इसके शवाहिद और निशान भी दिखाते हैं, लेकिन अगर अब भी वो उसके कलाम के साथ कायम नहीं रहे, तो फिर ये रुलकुस तो ना हुआ, समझे? जब आप कलाम मुकद्दस की हर ऐत पर यकीन ले आते हैं, तो फिर आजमाइश के बाद आप पर मोहर हो जाती है। जब हम कलाम मुकद्दस के हर वादे का यकीन करते हैं, तो फिर रुलकुस के वसीला से वादे की पुख्तगी के लिए हम पर मोहर की जाती है। यही वो तरीका है जिस तरह से इब्राहिम ने किया। तो फिर तब ही सिर्फ हमारे पास हक है कि हम अपने दुश्मन के फाटक के मालिक हों। आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक आप पहले उसकी शाही नस्ल ना बन जाएं। याद रखें, बाइबल में ऐसा है। मैंने इस पर होस्टन या किसी और जगह मनादी की थी, दूसरी किसी जगह, या मेरा मतलब है टिलास में, यानी निशान के मौजू पर। गौर करें, एक यहूदी इसराइल में ये तो दिखा सकता था कि वो खतना के वसीला वो एक यहूदी है, लेकिन खुदा फरमाता है जब मैं खून देखता हूँ तो वो खून तुम्हारे लिए एक निशान ठहरेगा। वो जिंदगी जो खून में थी, वो प्रस्तिश करने वाले के ऊपर नहीं आ सकती थी। क्यों? इसलिए कि वो तो जानवर की जिंदगी थी, ये सिर्फ हकीकी जिंदगी पर आने वाला एक अक्स था। तब खुद कीमियाई खून को दरवाजों और उनकी चौकटों को सुर्ख करना पड़ा। जुफे से खून लगाना, जो कि एक आम सी गास है, जो ये जाहिर करती है कि आपको आला किस्म का ईमान नहीं रखना, आपको बिल्कुल इस किस्म का ईमान रखना है जो आपको मिल चुका है, जैसा कि अपनी गाड़ी को चलाना, कलीसिया में आना। देखें, बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ और चीज मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ सादा ईमान से आपने खून को लगाना है। कलामे मुकद्दस को सुनिए और कलाम मुकद्दस पर ईमान रखें, इसे अमल में लाएं, बस यही बात है। फिलिस्तीन में कहीं से भी ये घास मुयस्सर थी। यही जुफा था, जो कि छोटा सा जंगली पौधा दीवारों की दरारों से उगकर बाहर आता था, और यही कहीं इर्द गिर्द से उन्होंने खून में डुबोकर दरवाजों की चौकटों पर लगाया। और याद रखें, मुझे इसकी परवाह नहीं कि वो अहद में कितना ज्यादा था, कितना ज्यादा वो यहूदी ये जाहिर कर सकता था कि वो खतना याफ्ता है, वो आदमी कितना अच्छा है। सारा अहद मनसूख था जब तक के वो निशान वहाँ ना होता। जब मैं उस खून को देखता हूँ, सिर्फ खून को, अभी तक वही खून निशान है, कीमियाई खून नहीं। यीशु का कीमियाई खून हजारों साल पहले ही बहाया जा चुका है। लेकिन आप देखें कि कीमिया को वही होना पड़ता, क्योंकि जानवर की जिंदगी कभी भी इंसान के ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि जानवर की जिंदगी में जमीर नहीं है। जानवर गलत और दुरुस्त में तमीज नहीं कर सकता, ये सिर्फ इंसान है जिसमें शऊर है। अब लेकिन जब यीशु इब्ने खुदा जो कुंवारी से पैदा हुआ था, उसने अपना खून बहाया, वो जिंदगी जो उस खून के अंदर मौजूद थी वो बजाते खुद खुदा की थी। बाइबल फरमाती है हम उस जिंदगी से बचाए गए हैं जो खुदा के खून में थी, ना के यहूदी के खून से, ना ही एक गैर कौम के खून से, बल्कि खुदा की जिंदगी के वसीला से। खुदा ने इस खून के खलिया को एक पाक कुंवारी से तख्लीक किया। वो किसी मर्द से वाकिफ ना थी, ना ही उससे, ना ही कोई अंडा उससे जाहिर हुआ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे ये ईमान रखते हैं कि अंडे के वसीला से सब कुछ मुमकिन किया गया। बगैर हिस के और जोश के अंडे का वजूद ही नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर खुदा ने क्या किया, समझे? उसने अंडा और खून का खिलिया दोनों को तख्लीक किया, और वो खुदा का पाक तरीन खेमा था। मैं अपने मुकद्दस को सड़ने नहीं दूंगा कि वो पताल में रहे। देखें फिर अंडा कहाँ से आया, ना ही अपने बदन को पताल में छोड़ूंगा, क्योंकि उसका बदन पाक था। हो मेरे अजीजो, अगर आप इसका यकीन नहीं कर सकते तो फिर किस तरह आप खुद को एक मसीही कहते हैं? हम खुदा के खून के वसीला से निजात याफ्ता हैं, जो कि मेरा ईमान है, ना कि एक नबी के खून के, ना ही एक आम इंसान के खून के, या एक उस्ताद या एक दीनी आलम के खून के जरिए, बल्कि खुदा के खून के वसीला। खुदा ने इसी तरह फरमाया, वो बनी नो इंसान बना, उसने अपना किनारा तब्दील किया, उसने अपना खेमा यहाँ फैला दिया हमारे ही साथ, और हम में से एक बन गया। वो हमारा कराबती कफारा देने वाला बना, उसे हमारा कराबती बनना पड़ा, क्योंकि ये शरीयत में था। खुदा इंसान बन गया और हमारे दरमियान रहा। गौर करें कैसे वो ये कर रहा है। वो खुद आ रहा है जो कि खुदा का रूह है, और वही रूह ईमानदार पर आता है। इसलिए वो जिंदगी जो हमारी कुर्बानी में थी, हम उसी जिंदगी के वसीला से शनाख्त होते हैं। फिर वो कैसे खुदा की जिंदगी को लोगों के दरमियान जुम्बश करते हुए देख सकते हैं और उसे नापाक चीज कह सकते हैं, जबकि ये हमारी कुर्बानी की शनाख्त है। वो जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। उसकी जिंदगी फिर वापस कुर्बानी पर लौटती है, कुर्बानी ही से, जब हम अपने हाथों को उस पर रखते हैं और खुद को अपने ही ख्यालात के सामने मुर्दा शनाख्त करते हैं। तो फिर कैसे हम तंजीमों को इजाजत दें कि वो हमें अकीदों और मुख्तलिफ कामों के अंदर धकेल दें और कहें कि हम तो यकीन रखते हैं, हम तो उन कामों के सबब से मुर्दा हैं। पालूस कहते हैं इन चीजों में से कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक मुतलिक ताकत मसीह के साथ बंधा हुआ था, और हर एक सच्चाई का अजीम काम कादर मुतलिक से जुड़ा हुआ है, और मेरी ताकत कलाम है, हर किसी की है जो सचमुच रुलकुश के वसीला से पैदा हुआ है, उनकी कुव्वत खुदा का कलाम है, मैं इसी से बंधा हुआ हूँ। मैंने अपने हाथ उसी पर रखे थे और उसने मेरी जगह ली, और मैंने खुद को उसके साथ शनाख्त कराया। हम जानते हैं कि उसने खुद को हमारे साथ शनाख्त कराने का वादा किया था, जो हकीकी ईमान लाता है, ना कि आपका ईमान बल्कि उसका ईमान। कोई भी ऐसी बात जिस पर आप काबू नहीं पा सकते, वो जरूर उस पर गालिब आता है। अब गौर करें, फिर वाहिद यही बात है, ये वादा आपसे किया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी कलीसियाओं से नाता जोड़ा, कितनी मर्तबा बपतिस्मे लिए, अपने चेहरे को ऊपर नीचे हाँ या ना में हिला चुके हैं, किसी भी तरह से जो आपने चाहा। जब तक वो मोहर आप पर नहीं लगाई जाती, तब तक आपके पास कोई हक नहीं कि खुद को अपनी कुर्बानी के साथ मुंसलिक करें। और खुदा की मोहर क्या है? इफिसियों 4:30 बयान करती है कि खुदा के रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर की गई है, ना कि एक बेदारी से दूसरी बेदारी तक, बल्कि अबदी मोहर उस दिन तक के लिए जिसमें आप वापस मखलसी को पाते हैं। और याद रखें, अगर आप कभी खुदा के इरादा में ना होते तो कभी भी खुदा के साथ ना होते। कितने ये जानते हैं कि वो एक फिदिया देने वाला है, ठीक है? फिर कोई भी चीज जिसका फिदिया दे दिया गया हो तो उसे उसकी जगह वापस आना पड़ता है, जहाँ से ये गिरी थी। इसलिए अगर वो हमें मखलसी देने आया था तो किस तरह हम कह सकते हैं कि उसके एक ही मर्तबा आने से मखलसी नहीं हुई, और जबकि हम सभी ने गुनाह में पैदा होकर गुनाह की सूरत इख्तियार की और फिर दुनिया में झूठ बोलते हुए आए। ये जाहिर करता है कि एक सच्चा मसीही खुदा की सोच का मजहर है। इसे पेशतर के दुनिया होती या कोई सितारा या हवा या कोई और चीज, ये अब्दी है और वो वापिस हमारा फिदिया देने को आया। ये खुदा की सोच है जो के कलाम की सूरत में बोला गया, जो जाहिर करता है कि दोबारा से वापिस उसके ख्याल को लाया जाए। कराबती निजात दहिंदा, यही सबब है कि खुदा को खुद ही हम में से एक बनना पड़ा ताकि कफारा दे। कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता था, कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं। उसे नीचे आना पड़ा था ताकि वो हमारी तरह आजमाया जाए, ताकि हमें मखलसी मिल जाए। अब इब्राहिम की जिस्मानी नस्ल पर गौर करें। चलें हम कुछ जिस्मानी नस्ल का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि खुदा अपने कलाम को उस जिस्मानी नस्ल यानी जो कि इसहाक था पूरा करता है। चले हम कुछ जिस्मानी नस्लों का जायजा लेते हैं जो कि खुदा के वादे का भरपूर तौर से यकीन रखते थे। उनके पास कोई सवाल न था। अब याद रखें कि 10,000 मर्तबा, क्या हजारों मर्तबा भी, उन्हें हजारों से ज़र्ब देने पर भी और उनका खतना याफ्ता होने पर भी, वो सब कुछ करने के बावजूद भी वो अभी तक इब्राहिम की नस्ल नहीं थे। यकीनन वही यहूदी है जो बाहर से यहूदी नहीं है, बल्कि असल यहूदी तो अंदर का है। वो बल्कि बहुत सारे उनमें होकर बुरी तरह से नाकाम हुए। बियाबान में निगाह डालें। उन्होंने कहा, हम ईदे फसा के दिन या उस चश्मे से पी रहे थे। मुकद्दस योहन्ना 6 में वो सब खुशी मना रहे थे। यीशु ने कहा, मैं ही वो चट्टान हूँ जो बियाबान में थी, मैं ही वो रोटी हूँ जो खुदा की तरफ से आसमान से उतरी। अगर कोई इंसान इसमें से खाए तो हरगिज ना मरेगा। उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा ने बियाबान में 40 साल तक मन खाया। यीशु ने कहा, और उनमें से हर एक मर गया। मौत, इस लफ्ज को लेकर अलग कर दें और देखें इसका क्या मतलब है। अबदी जुदाई, अब भी वो इब्राहिम की नस्ल थे। मौत का मतलब है जुदाई, फना होना, मुकम्मल तौर पर तबाह या नेस्तो नाबूद हो जाना। यीशु ने कहा, उनमें से हर एक हलाक हो गया, हालांकि वो खतना याफ्ता यहूदी थे। देखें वो बेचारे लोग, हम तो सिर्फ मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेसबिटेरियन हैं, बस इसी तरह का छोटा सा इकरार किया और इसी तरह के और काम किए। अबलीस भी इतना ही ज्यादा ईमान रखता है जितना के हम रखते हैं, लेकिन आपकी इसके साथ शनाख्त हुई है। खुदा को ये करने के लिए गवाह मिल गया रूल कुछ की मोहर लगाने के साथ, ताकि कलाम मुकद्दस पर कोई सवाल ना हो। अगर आप कहते हैं ठीक है, अब ये तो किसी और वक्त के लिए था, तो फिर कुछ गलत है। जिस तरह एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और आप उसे बताते हैं रोशनी चमक रही है, और वो भागकर तहखाने में जाए और कहे, मैं तो इसे रद्द करता हूँ, रोशनी जैसी कोई चीज ही नहीं और मैं इस पर ईमान भी नहीं रखता, तो फिर उस आदमी के साथ जरूर कोई मसला है। वो जरूर ही ज़हनी मरीज है। अगर वो गर्म किरणों और उसके जिंदगी बख्शने वाले ज़राए को नापसंद करता है, तो फिर उसके साथ जरूर कोई ज़हनी मसला है। और जब एक आदमी खुदा के कलाम को अपने सामने वाज़े शनाख्त करके देखने के बाद भी फिर भी वो अपनी तंजीमी पर्दा को फौरन ही नीचे खींच लेता है, तो फिर उस आदमी के साथ कोई रूहानी मसला है, उसके साथ जरूर कोई मसला है, तो फिर जरूर ही उस आदमी के साथ कोई रूहानी मसला है। वो इसे हासिल नहीं कर सकता, वो अंधा हो चुका है और उसे जानता नहीं, इसलिए वो सजा की तरफ जा रहा है और खुदा उसकी अदालत करेगा। गौर करें, जब उन्होंने ऐसा किया और ये नस्लें अब जो हैं, उन्होंने इसका यकीन किया। ध्यान दें क्या हुआ। चले उनमें से कुछ का जायजा इब्राहिम की नस्ल के तौर पर लेते हैं। चले इब्रानी बच्चों को लेते हैं। वो सच्चाई पर कायम रहे और उन्होंने किसी बुत की प्रस्तिश की पैरवी ना की। जो मूरत कौम के बादशाह ने बनाई थी, उन्होंने उस मूरत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ये मूरत एक मुकद्दस इंसान दानियल के रोया देखने के बाद बनाई गई, जो जाहिर करता है कि गैर कौम को झूठ की तरफ लाया जाएगा ताकि मुकद्दस आदमी की मूरत को सजदा करे। ये बिल्कुल इसी तरह से बढ़ता जाएगा जब लोगों को मजबूर किया जाएगा कि वो मूर्तों की प्रस्तिश करें। ये दानियल पर मुकाशफा से जाहिर हुआ और वो इस काबिल हुआ कि इस कलाम की ताबीर करे जो हाथ से दीवार पर लिखा गया था। इसी तरह से ये अंदर आया और इसी तरह से ये बाहर फैलता गया, बिल्कुल उसी गैर कौम की मूरत की तरह। गौर करें, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने क्या किया, वो इब्राहिम की नस्ल थे, कलाम के साथ सच्चाई पर कायम थे और उन्होंने दुश्मन के फाटक यानी आग के फाटक पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक है, खुदा का कलाम सच्चा है। दानियल एक जिंदा खुदा की इबादत के लिए आजमाया गया, वो उसकी खातिर आजमाया गया और आजमाइश के वक्त वो आजमाइश में कायम रहा। और फिर खुदा ने क्या किया, जैसा कि हम कहेंगे कि बाद में इस तरह लगा कि जिस तरह उसे रेजा रेजा कर दिया गया हो और वो नहीं जानते थे कि क्या करें। वो लोग उसे शेरों के आगे डाल रहे थे, मगर दानियल आजमाइश में पूरा उतरा, इसलिए कि सिर्फ एक ही सच्चा खुदा है और उसने अपने दुश्मन के फाटक पर कब्जा कर लिया। खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। मूसा वादा के कलाम में उन जाली धोखेबाज यम्ब्रीज और यूनीस की आजमाइश में भी सच्चा ठहरा। देखें, खुदा उससे एक माफूकुल फितरत रूप में मिला, उसे बताया कि वो जाए और ये काम करे, ये निशान दिखाए, और इसी तरह हर निशान में एक आवाज होगी। मूसा बिल्कुल सीधा गया, इतना सच्चा ठहर कर जितना वो जानता था। उसने आशा को नीचे फेंका तो वो एक सांप में बदल गया। क्या आपको मालूम है फिर क्या हुआ? यहाँ वो जाली धोखेबाज आ गए, उन्होंने भी ऐसा ही किया। अब मूसा हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा और कहा हो कि ठीक है, मैं पहले अंदाजा तो कर लूं कहीं ये सब कुछ गलत तो नहीं है, बल्कि वो वहीं ठहर गया और खुदा पर आस रखी, वो सच्चाई पर कायम रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ कितने जाली धोखेबाज मौजूद थे, लेकिन वो सच्चाई पर कायम रहा और वो उस इख्तियार के साथ सच्चा रहा ताकि उन लोगों को उस जगह से बाहर लाए। और जब पानी का फाटक उसके रास्ते में आ गया, खुदा ने उसे इजाजत दी कि उस फाटक पर काबिज हो जाए और उसने आग के सतून से उस फाटक के दरवाजे को खोल दिया जो कि उसकी रहनुमाई कर रहा था, और वो लोगों को उस वादे की सरजमीन की तरफ ले गया। यशुआ एक दूसरा अजीम रहनुमा, उनमें से सिर्फ दो वादे की सरजमीन में दाखिल हुए, यशुआ और कालेब। वो उस जगह आए जिसका नाम कादिस था, जो कि उस वक्त दुनिया का मरकज था। इसमें बहुत कुछ के अलावा तख्ते अदालत भी था। और हो, उन्होंने 12 जासूस उस सरजमीन को देखने के लिए भेजे और वो 12 ही वापिस आ गए। उनमें से 10 ने कहा, हो ये तो एक काम से कहीं ज्यादा बढ़कर है, हम तो बस कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, उन लोगों के सामने हम तो बस घास के टिड्डों की मानिद हैं। मगर यशुआ ने क्या किया, उसने लोगों को खामोश करा दिया। उसने कहा, एक लम्हे के लिए ठहर जाओ, हम उन पर काबिज होने के लिए काफी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम तादाद में कितने कम हैं या अकलियती एतबार से कितने हैं। वो क्या कर रहा था, वो उस वादे में पूरा उतर रहा था कि मैं ये सरजमीन तुम्हें देता हूँ, मगर तुम इसके हर टुकड़े के लिए लड़ो। क्या आप उस परवरिश कनेदा का यकीन करते हैं? खुदा ने आपको आपकी शिफा अता की है, लेकिन आपको उसके हर एक इंच के लिए लड़ना होगा। जहाँ कहीं तुम्हारे पाँव का तलवा टिकेगा, वो जगह मैंने तुमको दे दी। पाँव के तलवों का मतलब है काबिज होना। ये सब तुम्हारी है, हर वादे का तल्लुक तुम ही से है, मगर तुम अब रास्ते में आने वाले हर हिस्से के लिए जंग लड़ो। अब यशुआ जानता था कि खुदा ने क्या फरमाया था, वो इब्राहिम की नस्ल था, समझे। उसने कहा, मैं इस पर यकीन करता हूँ कि खुदा ने हमें ये सरजमीन दी है और हम इसे लेने के काबिल हैं। इसराइल के सारे ग्रोहों के खिलाफ वो इस आजमाइश में पूरा उतरा, जबकि सारे कबीले और लोगों ने आहें भरी। यशुआ ने कहा, खड़े रहो क्योंकि खुदा ने वादा किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े हो और मुखालिफ पार्टी किस किस्म की है और डॉक्टर ने क्या कहा है, खुदा ने वादा किया है। ये खुदा पर मुनस्सर है कि ये सब कुछ करे। और उसने क्या किया, जब वो दरिया यर्दन की तरफ आया, वो फाटक पर काबिज हो गया। यही है जो उसने किया। यरहू एक कछुए की मानिंद एक होल के अंदर बंद था। उसने क्या किया, वो फाटक पर काबिज हो गया। हालांकि एक दिन जब उसका दुश्मन उस पर गालिब आने की कोशिश कर रहा था, तो उसने पूरी तरह से अपने दुश्मन के फाटक पर कब्जा कर लिया। उसने सूरज को हुक्म दिया कि बस अब यही ठहर जा, और सूरज ने उसके हुक्म की तामील की और जरा भी 24 घंटों के लिए इधर से उधर ना हुआ। खुदा अपने वादे का सच्चा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब उसने क्या करना है। इससे पहले कि वो अपने कलाम को शिकस्त खुर्दा होने दे, आसमान टल जाएंगे। उसने कभी भी इस किस्म का कोई वादा नहीं किया जिस पर वो पूरा ना उतर सके। मैं खुदावंद हूँ जो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता हूँ। अगर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो तंदुरुस्त हो जाएंगे। आमीन। अगरचे तुम यकीन ना करो, फिर भी तमाम बातें मुमकिन हैं। यशुआ उस पर ईमान रखता था। अगरचे खुदा को जमीन को घूमने से रोकना पड़ा तो उसने इसे वहीं रोक दिया दूसरी कुव्वत के वसीला से, जो कि उसकी खुद अपनी ताकत है। लिहाजा दुनिया 24 घंटे तक बिल्कुल भी न घूमी, उस वक़्त तक जब तक यशुआ ने अपने दुश्मन से इंतकाम न ले लिया। वो फाटक पर काबिज हो गया। यकीनन उसने ऐसा ही किया। खुदा हमेशा सच्चा है। अब काश के मेरे पास मजीद बहादुर लोगों के मुतालिक बताने का वक्त होता, मगर मुझे तकरीबन 10 मिनट ही मिले हैं। उन तमाम अहम बहादुर लोगों को देखें, जैसे कि वो ईमान के बहुत बड़े जंगजू थे। वो तमाम मौत के फाटक पर ढेर हो गए, बिल्कुल मौत के फाटक पर वो तमाम खत्म हो गए। फिर इसी के साथ इब्राहिम की शाही नस्ल आती है। वो तमाम ही इसहाक से फितरती नस्ल थे, लेकिन यहाँ इब्राहिम की शाही नस्ल सामने आती है, इब्राहिम के ईमान की नस्ल जो के मसीह था। ख्याल करें हमें कैसा होना है, सिर्फ देखें कि हम वैसे हैं या के नहीं। जिस्मानी नस्ल सिर्फ एक नमूना था, मसीह के अलावा तमाम जिस्मानी पैदाइश से पैदा हुए, मगर वो एक कुंवारी के वसीला से पैदा हुआ। देखें, एक यहूदी होते हुए वो इब्राहिम की जिस्मानी नस्ल से नहीं आया, बल्कि वो वादे के ईमान के तुख्म के वसीला से आया। और फिर हमें उस आदमी के वसीला से उसकी औलाद होना चाहिए। गौर करें उसने क्या किया। जब वो जमीन पर था, उसने दुश्मन के फाटक को फतह करके कब्जा कर लिया। यही शाही नस्ल है। उसने कलाम के वसीला से इसका वादा किया था, लिहाजा उसने इसे फतह कर लिया। उसने हमारे लिए बीमारियों के फाटक को फतह कर लिया। यही कुछ तो वो करने आया था। याद रखें, उसने बीमारियों के फाटक को फतह कर लिया। तुम्हें इसे फतह नहीं करना, उसने पहले ही इसे फतह कर लिया है। दूसरे लोगों को इसे फतह नहीं करना, तुम्हें इसे फतह नहीं करना, उसने पहले ही से इसे फतह कर लिया है। उसने बीमारियों के फाटकों को फतह किया है। और उसने क्या किया, जब उसने बीमारियों के फाटकों को फतह किया, ये कहते हुए कि वो करेगा जो कुछ तुम जमीन पर मांगते हो, और जो कुछ तुमने जमीन पर बांधा है वो उसे आसमान पर बांधेगा। उसने हमें फाटक की कुंजियाँ दे दी है। उसने आजमाइश के फाटक को कलाम के वसीला से फतह कर लिया है। और कुंजियाँ ये हैं, दुश्मन का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। उसने इस सब कुछ को फतह कर लिया है। हर बीमारी को भी फतह कर लिया है। उसने मौत को भी फतह कर लिया है, और उसने जहन्नम को भी फतह कर लिया है। उसने मौत और आलम रवा को फतह कर लिया है। उसने वो फतह किया जो दूसरे फतह नहीं कर सके, क्योंकि वो जिस्मानी नस्ल थे, ये रूहानी नस्ल था। उसने कब्र के फाटक को फतह कर लिया, और तीसरे दिन हमारी निजात के लिए जी उठा। और अब हम फतह से बढ़कर हैं। हम बिल्कुल सीधा उसी के अंदर एक वारिस की हैसियत से चलते जाते हैं, जो के फतह से बढ़कर है। अब हम शिकस्त खुर्दा दुश्मन के साथ निमट रहे हैं। बीमारी शिकस्त खुर्दा है, मौत भी शिकस्त खुर्दा है, जहन्नम भी शिकस्त खुर्दा है, सब कुछ ही तो शिकस्त खुर्दा है। ओ मेरे खुदाया, काश के मैं दुगना होता। अब शायद मैं दुगना होकर बेहतर महसूस करूं। हम गालिब होते हुए दुश्मन के साथ जंग लड़ रहे हैं। इसमें कोई हैरानगी नहीं कि पालूस ने कहा, जब वो एक तख्ता में कलबूत बना रहे थे कि उसका सर कलम करें, तो उसने कहा, ए मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? मुझे दिखा कि कहाँ तू मुझे परेशान करके चीखने के काबिल बना सकी। कब्र तेरी फतह कहाँ रही? और तू सोचती है कि तूने मुझे वहाँ से निकाल कर नरम कर दिया? मैं तुझे इस खाली बदन का हवाला दूंगा, और मैं खुदावन में हूँ, वो मुझे आखिरी वक्त में फिर जिंदा करेगा, उससे जो एक शिकस्त खुर्दा दुश्मन है। इब्राहिम की शाही नस्ल, अब जिस्मानी नस्ल इस तरफ इशारा नहीं कर सकती, मगर शाही नस्ल ही फतह कर सकती है, और पहले से ही उसने फतह कर लिया है, क्योंकि वो हमारे सामने ही हर फाटक को हमारे लिए फतह कर चुका है। वो अब भी 2000 साल गुजर जाने के बाद वो हमारे दरमियान कादरे मुतलिक फाते बनकर मौजूद है। उसने सिर्फ बीमारियों को जेर न किया बल्कि उसने बीमारियों पर फतह भी पाई, उसने आजमाइश पर भी फतह पाई, उसने हर दुश्मन पर फतह पाई, उसने मौत पर भी फतह पाई, उसने जहन्नम पर भी फतह पाई, वो कब्र पर फतह पाकर दोबारा जी उठा और 2000 साल बाद भी वो यही हमारे दरमियान मौजूद है और इस सपहर वो खुद को ताकतवर फाते के तौर पर शनाख्त कराता है। आमीन। वो अब भी यहाँ है, जिंदा है और अपने वादे को इब्राहिम की शाही नस्ल से सच्चा साबित कर रहा है। ओ मेरे खुदाया, वो अपने दुश्मन के फाटक पर काबिज हो गया। वो उन नस्लों के आगे यहाँ जिंदा मौजूद है और खुद को साबित कराता है कि वो कौन है, और जो लोग पहले से मुकर्रर शुदा हैं वो उसे देख सकते हैं। उसने उसे फतह कर लिया है। वो अपनी आजमाइश के बाद कलाम के वादा के मुताबिक रुलकुस के जरिया मसीह के बदन में मोहर शुदा थे ताकि उन्हें यकीन हो जाए। क्या अब्रानियों 13:8 इसी तरह है? उनके अंदर रुलकुस के वसीला से मोहर की गई थी। वो रुलकुस जिसके वसीला से इब्राहिम पहले ही जाना गया था, ईमान के वसीला से उसने उसका यकीन किया और अब हम उसे हासिल करते हैं वापस उसके वादे को देखकर जिसमें उसने फरमाया, और यूहन्ना 14:12 इन आखिरी अयाम की तस्दीक है, बजाते खुद जी उठने वाला फाते है, ना के कोई निजाम बल्कि एक शख्स फाते जो मसीह है, ना के मेरी कलीसिया, ना के मेरी बैप्टिस्ट कलीसिया या आपकी प्रेसबिटेरियन, मेथोडिस्ट या पेंटिकॉस्टल, ना के इनके वसीला से बल्कि यीशु मसीह के वसीला से। वो आज भी जिंदा है और वो हमारी निजात के लिए जी उठा, और चूंकि वो जिंदा है उसने कहा हम भी उसके वसीला जिंदा रहेंगे। आदमी सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा बल्कि हर उस बात से, ना के कलाम के कुछ हिस्सा से बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, और जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वो हरगिज़ ना मरेगा। क्या आप इसका यकीन करते हैं कि दुश्मन के फाटक पर कब्जा कर लिया? कैसे वो बोसवर्थ को फतह कर सकता था जबकि फतह मंद खुदा तो बोसवर्थ के अंदर था? और यही सबब है कि उसने कहा कि सबसे ज्यादा खुशी का वक्त तो मेरी जिंदगी में अब है। जी हाँ, वो उस कादरे मुतलिक फाते को जानता था, उसकी यकीन दहानी उसके साथ थी। ओ मेरे अजीजो, अब हम गा सकते हैं, जिंदा रहकर उसने मुझसे प्यार किया, मरकर उसने मुझे बचाया, दफन होकर उसने मेरे गुनाहों को दूर कर दिया, जी उठकर उसने साबित कर दिया कि हमेशा के लिए आजाद है। किसी दिन उसकी आमद का दिन कितना जलाली होगा उनके लिए जो बड़े ही शिकस्ता और मायूस लगते हैं। एडी प्योरेन, मेरा यकीन है कि यही वो शख्स था। वो अपने मसीही गीत फरोख्त नहीं करता था, कोई भी शख्स इन्हें पसंद नहीं करता था, वो उससे कोई भी तल्लुक नहीं रखते थे। ओ शिकस्त खुर्दा एक ईमानदार, एक दिन रुलकुस उस पर नाजिल हुआ और उसके दुश्मन का फाटक जो उसके गीतों को हासिल नहीं कर पाया, रुलकुस ने उसे हौसला दिया और उसने फौरन कलम उठाया तो खुदा ने उसे इजाजत दी कि वो इफ्तिताया गीत लिखे। सारी कुदरत यस्सु नाम में नाजिल होती है, फरिश्ते इंतहाई इनकिसारी से झुक जाएं, शाहाना ताज को पेश किया जाए और ये ताज उसे पहनाया जाए जो सबका खुदावंद है। नाबीना फैनी क्रॉस्बी को एक मर्तबा किसी शख्स ने कहा तुम्हारा क्या मतलब है, जबकि उसने अपना पदेशी हक नहीं बेचा था जिस तरह के पेंटिकोस्टल एल्विस प्रीस्ले ने किया, या जिस तरह से चर्च ऑफ क्राइस्ट के बून ने किया, जिस तरह से रेड फोली ने किया, अपनी सलाहितों को दुनिया के आगे बेच दिया। उन्होंने तेज रफ्तार कैडिलैक्स कारें, डॉलर और गोल्ड कार्ड खरीद लिए, मगर फैनी क्रॉस्बी अपने ईमान में कायम रही। वो चिल्ला उठी, ए हलीम नजात दहिंदा, मुझे छोड़ न देना, मेरी आजजी की इल्तिजा को सुन ले, जबकि दूसरों को तू बुलाता है मेरे करीब से गुजर न जाना, तू ही मेरे सारे इत्मीनान का चश्मा है, मेरी जिंदगी से बढ़कर है, तेरे सिवा जमीन पर मैं कुछ भी नहीं और तेरे सिवा मेरा आसमान पर कोई नहीं है, बस तू ही है। उन्होंने कहा क्या हुआ, अगरचे तुम अंधी हो फिर भी आसमान पर जाना चाहती हो, क्या तुम उसे पहचान लोगी? उसने कहा मैं किसी न किसी तरह उसे पहचान लूंगी। उसने पूछा तुम कैसे उसे पहचान लोगी? उसने जवाब दिया मैं उसे पहचान लूंगी। उस शख्स ने उससे कहा मिसिस क्रॉस्बी तुम लाखों डॉलर बना सकती हो। उसने जवाब दिया मैं लाखों डॉलर नहीं चाहती, तुम उसे कैसे पहचान लोगी? उसने जवाब दिया मैं उसे पहचान लूंगी और उसकी तरफ से निजात पाकर मैं साबित कदम रहूंगी, मैं उसे पहचान लूंगी। अगर मैं उसे देख न सकूं तो भी मैं उसके हाथों में कीलों के निशानों की वजह से महसूस कर लूंगी, उसने अपने दुश्मन के फाटक पर फतह पा ली। जी हाँ, अगर तुम मसीह में हो तो यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे तो मांगो कौन सी चाबी तुम्हें चाहिए, कहो किस फाटक पर तुम कब्जा करना चाहते हो, मांगो जो तुम चाहते हो ये तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे तो फिर तुम किसी भी सामने आने वाले दुश्मन के फाटक पर कब्जा कर सकते हो, क्योंकि तुम इब्राहिम की शाही नस्ल हो। तुम्हारे सामने किस किस्म का फाटक खड़ा है? अगर ये बीमारी का है तो फिर तुम इसे फतह करने के लिए बहुत ताकतवर हो। फिर हम कह सकते हैं और ये खूबसूरत सा गीत गा सकते हैं, हर वादा कलाम में मेरा है, हर बाप हर ऐत और इसी तरह हर इलाही बात, मैं उसके इलाही प्यार पर यकीन रखता हूँ, इसलिए कि हर वादा उसका मेरा है। हम फतह से बढ़कर हैं और इब्राहिम की नस्ल दुश्मन के फाटक पर काबिज हो गई। जब वो कहते हैं ये बातें रूनमा नहीं हो सकती, जब उन्होंने उसको शैतान, बालजबूब या दूसरे बातों से मुखातिब करना चाहा, मगर खुदा कादर है कि वो हर फाटक और दुश्मन पर गालिब आए। आइए दुआ करें। ए खुदावंद, अता करके नस्ल इब्राहिम, ए खुदावंद, मैं जानता हूँ कि वो उसे देखेंगे। कैसे ये कलाम अपना असर दिखाए बगैर बेतासीर हो सकता है? मैं दुआ गो हूँ कि वो अब इसे समझ जाएं। अता करके हर कोई शख्स जो भी दुआया कतार से आए वो शिफा पाए। ए खुदावंद, अब अगर यहाँ थोड़े से भी हों जिन्होंने अभी तक इकरार नहीं किया है और मसीह के लिए एलानिया तौर पर खड़े नहीं हुए, कि तमाम अकीदों और हट धर्मी की रस्मों और मुर्दा काम जो उन्हें तुझसे दूर ले जा चुके हैं तरक कर दें, और अब वो खड़े हों और कहें कि मैं उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, फिर तू उस दिन उनकी खातिर खड़ा होगा। जबकि हमने अपने सरों को झुकाया हुआ है, अगर यहाँ ऐसे हैं तो क्या वो दुआ के लिए एक लम्हा के लिए खड़े होकर कहेंगे, मैं अभी उसके लिए खड़ा होता हूँ ताकि उस दिन वो भी मेरे लिए अपनी इलाही हजूरी में खड़ा हो? अगर तुम खड़े होगे तो मैं तुमसे कहता हूँ और तुम्हें ये मौका फराहम करता हूँ कि तुम्हारे नाम भी किताब हयात में शामिल होंगे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम किसी कलीसिया से नाता जोड़ लो। अगर आप यहाँ हो और उसे नहीं जानते तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मसीह के पास आ जाओ। बेटा, खुदा तुम्हें बरकत दे। कोई दूसरा है तो कहे, मैं अभी से खड़ा होना चाहता हूँ। औरत, खुदा आपको बरकत दे। मेरी बहन, खुदा आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। मैं इस सपहर खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। ये बेहतरीन लोग हैं जिनमें मर्द और खवातीन खड़े हुए हैं और कह रहे हैं मैं इस सपहर खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। और उस दिन जब डॉक्टर ये कहेगा ठीक है, तबाही और बर्बादी है क्योंकि इसका खून बह रहा है और मौत इस आदमी पर है या इस औरत पर आ पहुँची है, और उस सुबह फिर आपको अपने खड़े होने के बारे में याद आएगा, इसलिए अभी खड़े हो जाएं। अगर तुम आदमियों के सामने मुझसे शर्माओगे तो मैं भी अपने बाप और फरिश्तों के सामने तुमसे शर्माऊंगा, लेकिन अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इकरार करोगे तो फिर मैं भी अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने इकरार करूंगा। मेरी बहन, खुदा तुम्हें बरकत दे। क्या बालकनी में कुछ लोग मौजूद हैं? ठीक है, अभी हम इंतजार कर रहे हैं। क्या उनमें से ज्यादातर मेन फ्लोर पर हैं? ठीक है दोस्त, मैं तुम्हें तुम्हारी बात पर वापस ले जाता हूँ। अगर कलाम जरखेज जमीन पर गिरता है जैसा कि कुएं पर उस औरत पर गिरा, वो समझ गई, उसे आसमान में जाहिर किया गया था बनाए आलम से पेशतर, इसलिए जब नूर उससे टकराया तो उस औरत ने उस नूर को पहचान लिया। मेरे भाई, खुदा तुम्हें बरकत दे। ये एक हौसला मदाना बात है। मेरे भाई, खुदा तुम्हें बरकत दे। तुमने अपनी जिंदगी में शायद बड़े जबरदस्त काम किए होंगे। अब तुमने मसीह के लिए खड़े होकर वो अजीम काम किया है जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी किया हो। ऐ हमारे आसमानी बाप, इस सपहर बीज कुछ जमीनों में गिरा है। हम देखते हैं जिंदगी की कोंपल फूट रही है, मर्द और खवातीन अपने पांव पर खड़े हो रहे हैं और खुदा की आंख हर एक को देख रही है जो कि हर जगह मौजूद है, जो कि आलमुल गायब है, कादरे मुतलिक है और इन्हें देख रहा है। ए बाप, वो तेरे ही हैं। मैं इन्हें तेरे सामने फतह की निशानी के तौर पर पेश करता हूँ। अता करके इनका तजर्बा अब यहीं कायम रहे, ये जानते हुए कि उन्होंने क्या किया है, ये भी जानकर कि इसका क्या मतलब है। ये खुदावंद के उन चंद अदना लोगों के साथ साबित कदम रहकर कायम रहें। अता करके ये हमेशा ही सच्चाई पर चले उस दिन तक कि तेरी हजूरी में खड़े हो सके। फिर वो प्यारी आवाज कहेगी, जी हाँ, एक दिन बैटन रू या एक छोटी सी जगह जिसे डेनहम स्प्रिंग कहते हैं, ए बाप ये मेरे लिए खड़े हुए, अब मैं इस मर्द के लिए और इस औरत के लिए खड़ा होता हूँ, खुदावंद ये बख्श दे, यीशु नाम में ये तेरे लोग हैं, आमीन। आपके खड़े होने के लिए खुदा आपको बरकत दे। खुदा आप ये एक काम मेरे लिए करें, ढूंढें अगर आपके इर्द गिर्द जहाँ ये पास्टर साहबान हैं, चंद को देखें, उनसे बातचीत करें, अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया तो इस तरह करें, मसीही बपतिस्मा लें, आप खुद को अभी से ईमानदारों के सच्चे ईमानदारों के दरमियान लाएं, ना के बनावटी ईमानदारों के बल्कि सच्चे ईमानदारों के दरमियान लाएं। जबकि हम दुआ कर रहे हैं, आइए इन रुमालों पर दुआ करते हैं। आसमानी बाप, ये रुमाल अब बाहर जा रहे हैं, कहाँ मैं नहीं जानता, शायद ये कोई बूढ़ा नाबीना वालिद यहाँ से बाहर किसी मुसीबत में पड़ा हो जो इस रुमाल के आने का इंतजार कर रहा हो, या एक छोटा बच्चा जो अस्पताल में पड़ा हो, या एक माँ पागलों की तरह खड़ी हुई रुमाल के आने का इंतजार कर रही हो। आसमानी बाप, मैं दुआगो हूँ कि तू इन रुमालों के साथ जाएगा, और आज ये तेरी हजूरी के निशान के लिए हैं, और हमारा ईमान तुझ पर है जिस तरह के हमने तेरे कलामे मुकद्दस को पेश किया है, अता करके वो ईमान जो इब्राहिम में था और वो ईमान जो पैदा किया गया था और हमें यीशु मसीह के वसीला से बख्शा गया था, बख्श दे कि वही ईमान इन रुमालों के साथ जाए और हर किसी को जिस पर भी रखा जाए वो शिफा पाए, हम इन्हें यीशु के नाम में भेजते हैं, आमीन। अब एक लम्हा के लिए, इससे पहले कि हम दुआया कतार को बुलाएं, कादर और कादरे मुतलिक खुदा, सबसे अजीम, सबका मालिक, मेहरबानी से दोस्तों, में मैं बीमारों के लिए दुआ शुरू करने जा रहा हूँ, और मैं गालबन जब हम नीचे आते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता, और हो सकता है कि आप में से कुछ इस वक्त से पहले ही चले जाएं। आप जो भी हैं, अगर आप अभी तक खड़े नहीं हुए तो वक्त गुजर रहा है और अभी तक आप पुर यकीन नहीं हैं। अगर आप कलीसिया के रुकन हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये काफी अच्छी बात नहीं है। देखो वो अमीर हाकम भी एक कलीसिया का रुकन था, समझे, उसने यीशु से पूछा कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए वो क्या करे, मगर उसने उसे कबूल नहीं किया, वो चला गया। उस नौजवान के लिए कितनी हमाकत की बात थी, उसकी जगह मत लें। क्या आपको याद है कि उसकी आखिरी शिनाख्त कहाँ की गई? थोड़ी ही देर बाद वो खुशहाल हो गया, वो अमीर तरीन बन गया और उस मकाम तक पहुँच गया कि उसके खित्ते दौलत और माल से भर गए, मगर फिर हम उसकी आखरत को देखते हैं अजियत वाले शोलों के अंदर दोजख में। मत ऐसा अपने साथ होने दें, मसीह को कबूल करें। आप जो नौजवान अफराद हैं, आप जो नौजवान लड़कियां हैं, आप नौजवान लड़के हैं, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मेहरबानी से मसीह को कबूल करें। मेरी आवाज़ सुनिए, जैसा कि मैं आपका भाई हूं, जो आपसे प्यार करता हूं, मैं यहां मौजूद हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, और मैं खुदा से प्यार करता हूं, आपसे भी प्यार करता हूं, और अगर मैं आपसे प्यार नहीं करता तो इसका मतलब है कि मैं खुदा से भी प्यार नहीं करता। मेरे पास तो इसके बरक्स बहुत कुछ है कि कहूं, अगर आपके पास कोई बात है तो करें, मेरे बेटे के बारे में या मेरे बच्चों में से किसी एक के बारे में, मैं तो इसके बगैर भी चला जाऊंगा, कोई भी वालदेन हो वो यही करेंगे, लिहाजा खुदा भी इसी तरह करेगा, समझे। इसलिए उसके लोगों से मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। आप कहते हैं फिर आप क्यों डांटते हैं? इसलिए कि दुरुस्त करना ही असल मोहब्बत है। अगर आपका बच्चा बाहर गली में बैठा हुआ है और आप कहते हैं ठीक है बेटा वहाँ बैठो, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, मगर मैं उसके मासूम जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन अगर आप उससे मोहब्बत नहीं करते तो वो वहाँ हलाक हो जाएगा। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो फिर आप उसे थप्पड़ मार कर भी अंदर लाएंगे, आप उसे ताबेदारी पर माइल करेंगे। इसी तरह से खुदा भी करता है, दुरुस्त करना ही असल मोहब्बत है। जबकि एक मनाद खड़ा होकर आप औरतों को बाल कटवाने, पतलून पहनने और इसी तरह के काम करने देता है और फिर आपकी सलाह भी नहीं करता, तो फिर ये असल मोहब्बत नहीं है, इसलिए कि वो इसे बाहर निकलने को कहेंगे। और इसी तरह मर्दों को तीन या चार मर्तबा शादी करने देता है और इसी किस्म के दूसरे काम करने देता है और वो ऐसी बातें हासिल करते हैं, तो फिर वहाँ हकीकी मोहब्बत नहीं है। तुम्हें कलीसिया में शामिल होने का मौका देते हैं और तुम्हारी कमर पर थपकी देते हैं और तुम्हें किसी अकीदे के साथ चलने के लिए तैयार करते हैं, यही सब कुछ है जो तुम्हें करना है, पाक कलीसिया में शामिल होना, तो फिर वहाँ कोई भी मोहब्बत नहीं है, बल्कि इंसान मुकम्मल तौर पर खो चुका है, इसलिए वो समझ नहीं सकता। दुरुस्त करना ही असल मोहब्बत है जो आपको वापस खुदा के कलाम की तरफ लाती है। यीशु पर निगाह करें, किस तरह उसने कहा था, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करता था। वो उनकी जगह मुआ, जबकि वो लोग उसके खून के लिए पुकार रहे थे। अजीम रूहे पाक, अब अता कर, मैं एक मिनट के लिए इंतजार करना चाहता हूँ। मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि जब तक रुल्क उसका मसा मुझे ना कहे, इससे पहले कि हम दुआ करना शुरू करें। मैं इसके बारे में मनादी करता रहा हूँ। आपके तावुन के लिए शुक्रिया। अब हर कोई यहाँ जहाँ कहीं भी इमारत के अंदर है, एक मिनट के लिए दुआ करे। कहें, खुदावन यीशु, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मुझे अपनी पोशाक को छूने दे। यीशु ने कहा, आप जानते हैं, जब उस औरत ने उसकी पोशाक को छुआ, उसने उसे जिस्मानी तौर पर महसूस नहीं किया, मगर वो पीछे मुड़ा तो जान गया कि वो औरत कौन थी और उसने क्या किया था। इस वक्त भी वो वही यीशु है। हम अपनी कमजोरी के बायस एक सरदार काहिन को छू सकते हैं। क्या अब आप में से हर एक ईमान रखता है, जैसा कि ये सच्चाई है और खुदा ने इसका वादा किया है एक दफा, और वो इसे जाहिर भी करता है, जैसे कि हम सदूम के दिनों में रह रहे हैं। इस इमारत के अंदर कितने हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं? सिर्फ अपने हाथ उठाएं। जैसे ये सदूम के दिनों में था, वैसे ही हम जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया का सारा निजाम खराब हो चुका है, सब कुछ, यहाँ तक के कलीसियाई निजाम भी सियासी बन चुका है। कुछ भी बाकी नहीं रहा। सियासत बहुत ज्यादा खराब है। हमारे निजाम में हमारे चारों तरफ आमर ही खड़े हैं, और ये सब कुछ ही तो खराब हो चुका है। कलीसिया भी इसी तर्ज की बन चुकी है, खानदान भी बिल्कुल इसी तर्ज के बन चुके हैं। ये बिल्कुल वही सदूम की तरह की बदअनवानी है। फिर याद रखें, खुदा इसे आपके सामने लाया है। याद रखें, उसने कहा कि वो खुद को इंसानी बदन में जाहिर करेगा, और इसी तरह करेगा जो उसने सदूम के लोगों के सामने किया, जब तक के वादे का फर्जंद मंजरे आम पर ना आया। उसने उस शख्स को भेजने का वादा किया था जो उस वादे के फर्जंद की राह तैयार करे, जिस तरह के उसने सबसे पहले यही किया कि उसने मुतारिफ कराया, और उसने कहा जब इब्ने आदम जाहिर होता है।
Don't know you. But Miss Thompson, that female trouble and complications, you believe that God will make you well? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe he'll make you well? Raise up your hands.
मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है मिस थॉमसन, जैसा कि आपको जनाना तकलीफ और पचीदगियां हैं, क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदा आपको शिफा देगा? क्या आप इस पर ईमान रख सकती हैं? क्या आप ऐसा करेंगी? मिस थॉमस, क्या आप ईमान रखती हैं कि वो आपको अच्छा कर देगा? तो फिर अपने हाथों को उठाइए। बिल्कुल तुम्हारे पीछे एक खातून बैठी हुई है, वो दुआ कर रही है, उसे जोड़ों का दर्द है। एक बिल्कुल उसके आगे बैठी हुई है, उसे मैदे की तकलीफ है, इसी तरह वो भी दुआ कर रही है। क्या आपने देखा नहीं कि आप मैदे की तकलीफ को छोड़ने जा रही हैं? आप यहाँ की नहीं हैं, आप मिसिसिपी से आई हैं, आप मिस्टर और मिसेस क्रीमर हैं। अगर आप अपने सारे दिल से ईमान रखते हैं, तो यीशु मसीह आपको शिफा बख्शेगा। अगर आप ईमान रखते हैं, क्या आप ईमान रखते हैं, तो फिर आपको शिफा मिल सकती है। ठीक है, अपने हाथों को बुलंद करें ताकि लोग देखें कि ये आप ही हैं।
I don't know them people. I've never seen him in my life. You've got to believe for him. He's identifying himself. You believe that? With all your heart?
मैं इन लोगों को नहीं जानता, मैंने इन्हें कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दोस्तों, आपको यकीन कर लेना चाहिए, वो खुद की शनाख्त करा रहा है। क्या आप उसका अपने पूरे दिल से यकीन करते हैं? जनाब, क्यों आपने अपना सर हिलाकर मुझे इस तरह देखा? जी हाँ जनाब, क्योंकि तुम ये कबूल कर चुके हो। मैं आपसे एक मिनट के लिए बात करने जा रहा हूँ। आप एक किस्म के उम्र रसीदा शरीफ आदमी हैं जो यहाँ बैठकर मुझे देख रहे हैं। उसने मुझे खलूस से दिल से देखा, उसने इसका यकीन कर लिया है।
You're seeking the baptism of the Holy Ghost. That's right. That is right.
आप किसी ऐसे शख्स के लिए दुआ कर रहे हैं जिसे सदमे से चोट लगी थी, मगर आपका खास मकसद जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जो कि आपकी जरूरत है, यानी रुल्कुस का बपतिस्मा, ये दुरुस्त है। जी हाँ, ये ठीक है। अगर आप इसका यकीन करते हैं, اے خاتون، آپ ملازمت تلاش کر رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ جانتی ہیں کہ میں خدا کا نبی یا اس کا خادم ہوں۔ آپ کا دو مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آپ کمزور ہیں۔ تمام قسم کی صورتحال کے ساتھ روحانی پریشانی بھی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب طے شدہ ہے۔ آپ کا ایمان ہی آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ ایک عورت بالکل آپ کے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ دعا کر رہی ہیں۔ یہاں دیکھیں، خدا نے آپ کی آواز سن لی ہے اور آپ نے اسے چھو لیا ہے۔ آپ اسے نہیں جانتی مگر وہ آپ کو جانتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس کے متعلق بات کر رہی تھی۔ کیا آپ سارے دل سے اس پر ایمان رکھتی ہیں؟ آپ کو مسانے کی تکلیف ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں، کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے کر ٹھیک کر دے گا؟ تو پھر آپ مسز سمتھ ہیں، یہ درست بات ہے۔ تو پھر اپنے ہاتھ کو اٹھائیے، دیکھیں کہ وہ خود کی پہچان کروا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم کی نسل ہے، وہ ایمان جو ابراہیم کے پاس تھا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان اپنے کلام کو نشانوں اور عظیم کاموں کے ذریعے ثابت کر رہا ہے۔ کتنے کارڈوں کے لیے دعا ہونی ہے؟ اپنا کارڈ لے کر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اور ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ دعائیہ قطار شروع کریں۔ آپ دیکھیں، کیا آپ سمجھ گئے ہیں یا نہیں سمجھے؟ اب وہ روح نہ کہ صرف شفا دیتی ہے بلکہ اپنی موجودگی کی بھی پہچان کراتی ہے۔ آپ کے خادموں کے پاس بھی بالکل یہی اختیار ہے کہ وہ بھی بیماروں کے لیے دعا کریں، مگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ نہیں، وہ یقیناً ایسا نہیں کرتے، مگر ان کے پاس بھی بالکل یہی اختیار ہے۔ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ اب میں اپنے خادم دوستوں سے چاہتا ہوں جو یہاں ہیں، یہاں کتنے خادم ہیں جو کہ اپنے سارے دل سے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور کتنے خادم یہاں موجود ہیں جو ایمان رکھتے ہیں؟ اوہ شکریہ، اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ یہاں پر آ جائیے، میرے ساتھ ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے، بالکل یہاں نیچے، اور بیماروں کے لیے دعا کریں۔ بالکل یہاں نیچے آئیں، دھیان دیں۔ اب آپ دھیان دیں کہ شفا نازل ہو رہی ہے۔
I want the believing pastors who want to identify themselves as believers, that you believe that you're coming here, you're living a holy, clean life. Remember, look at here what's coming out, representing the gospel of Christ.
میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور ایک دوری قطار بالکل یہاں بنائیں۔ میں وہاں نیچے بیماروں کے لیے دعا کرنے کو جا رہا ہوں۔ میں ان ایماندار خادموں کو چاہتا ہوں جو بذات خود کی پہچان ایمانداروں کی حیثیت سے کرانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ ایمان کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے کہ آپ بڑی ہی مقدس اور پاکیزگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں، دیکھیں، یہاں آپ مسیح کی خوشخبری کی نمائندگی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بھائی بلیئر، مجھے معلوم ہے کہ آپ یا بھائی پیٹ یہاں موجود ہیں۔ کیا آپ اس طریقے سے جس طرح آپ عموماً قطار بناتے ہیں، اب کیا آپ دوری قطار بنائیں گے؟ اگر آپ کی مرضی ہے تو پھر آپ اور بائی پیٹ دونوں ہی یہ کام کریں۔ ایماندار خادم جو اس بات کا یقین کرنے جا رہے ہیں، اب دیکھیں، اگر خدا اسی طرح سے اپنے کلام کے وسیلہ سے یا کلام کے ساتھ خود کی پہچان کروا سکتا ہے، تو کتنے جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یسوع نے یہ فرمایا ہے، جو ایمان لاتے ہیں یہ معجزے ان کے درمیان ہوں گے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ بیماروں پر رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ خادموں، آپ لوگ یہاں ایمانداروں کی حیثیت سے خود کی پہچان کروانے آئے ہیں، کیا آپ نہیں آئے؟ آپ ایماندار ہیں، کیا آپ ایماندار نہیں ہیں؟ کیا آپ یہاں کھڑے نہیں ہوں گے؟ اب یسوع نے فرمایا، ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ایک ایماندار کی طرح کھڑا ہوں، میں نیچے آ رہا ہوں۔ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان گلوں کے اوپر چرواہے ہیں۔ میں نیچے آ رہا ہوں کہ اپنا جال آپ کے ساتھ مل کر ڈالوں اور اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ رکھوں۔ جب یہ لوگ اس طرف سے آتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی چیز اپنے ذہن میں نظریاتی شک جیسی رکھ چھوڑی ہے، تو اسے بالکل ابھی نکال دیں، تاکہ جب یہ لوگ اس طرف سے آئیں تو ان میں سے ہر کوئی جو ادھر سے آئے اور ہم ان پر ہاتھ رکھیں تو وہ شفا پائیں۔ کیا اب ہر کوئی آپ میں سے سارے دل کے ساتھ ایمان رکھے گا؟ کتنے یہاں پر ہیں جو دوسروں کے لیے دعا کرنے والے ہیں؟ جو ہی وہ اس میں سے گزرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، میں بھی دعا کر رہا ہوں گا۔ یاد رکھیں، شاید آپ کے والد ہوں، آپ کی والدہ ہو، آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا، آپ کی بہن یا آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ آپ کے عزیز نہیں ہیں تو یہ کسی کے تو ہیں جو اس قطار میں سے گزر کر آ رہے ہیں۔ اور کیا ہوتا अगर ये आपके अजीजों में से कोई होता और वो कैंसर से मर रहा होता या किसी खौफनाक बीमारी से मर रहा होता, क्या आप इंसान के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस होना नहीं चाहते? यकीनन हम मुखलिस होना चाहते हैं। अब मुझे यकीन है, जैसे कि आप अब ये इस कतार में यहाँ दरमियानी रास्ते में वहाँ दुआया कार्ड के साथ इस हिस्से में खड़े हो जाएं। अब वो तमाम जो दाईं तरफ हैं, वो बिल्कुल इसके सामने खड़े हो जाएं। अब वो रास्ता जो बाईं तरफ है, वो सारा का सारा हमें बंद मिलता है। आप देखें, और आप नहीं जानते कि कैसे हम बाहर निकल सकते हैं और हम क्या करते हैं। ठीक है, वो सब जो अभी इस हिस्सा में मौजूद हैं, यहीं पर खड़े हो जाएं। अब वो सब जो दाईं जाने वाले हिस्से में हैं, इस तरफ आ जाएं, क्योंकि आप नीचे उतरने वाले हैं, इकट्ठे हो जाएं। बाय बॉर्डर्स, कैसे आप और दूसरे तमाम लोग जाएंगे दाएं जानिब के दरवाजे से, इकट्ठे होकर इमारत के अंदर फिर दाखिल होंगे। इस तरफ वाले लोगों को चंद ही मिनटों में बुलाया जाएगा और वो खड़े हो जाएंगे। और अब देखते हैं कि कैसा है। ठीक है, वो जो इस हिस्सा में है, यहाँ इस तरफ मुड़ जाएं, अपने दुआया कार्ड को पकड़े रहें और गुजरकर इस तरफ आ जाएं। और आप जो बालकनी में हैं, नीचे उतरकर कतार के आखिर में उन लोगों से जा मिलें। अब ये लोग जो बाएं जाने वाले हिस्से में हैं, वो उस बाएं जानिब चले जाएं। और फिर आप देखें, और आप अपनी कतार बनाकर वापस उसी रास्ते पर चले जाएं, वापस उसी रास्ते पर मुड़ें, समझे? और आप कतार के चौगिर्द चलेंगे तो फिर हमारी तरतीब बिल्कुल खराब ना होगी। और फिर आप जो ऊपर बालकनी में हैं, गिरजे के दरमियानी रास्ते में से उन पर निगाह करके बिल्कुल अपनी जगह का तायिन कर लें, और जैसे ही वो लोग आते हैं तो नीचे उतर कर उनमें शामिल हो जाएं।
Just come right around up in here. Just start walking right around and come to this line right here.
अब हर कोई वापस चलना शुरू कर दे, बिल्कुल वापस पीछे चलें, जब तक आप चारों तरफ से आने वाले लोगों की इस कतार से ना मिल जाएं। चारों तरफ से इसमें आएं, चारों तरफ से चलना शुरू करें और इस कतार में बिल्कुल यहाँ आ जाएं। अब क्या हुआ? वक्त तो अब पूरा होने वाला है, इसलिए कुछ तो जरूर वाकई होना है। ठीक है, अब ये दुरुस्त है। उस रास्ते से घूमकर वापस जाएं और बिल्कुल इसी तरह लाइन में लग जाएं, इस दरमियानी रास्ते से घूमकर जाएं। अब यही तरीका है। और अब जबकि आप में से हर कोई अपने पांव पर खड़ा है, तो हम दुआ करने जा रहे हैं और ये लोग भी मेरे साथ दुआ करने जा रहे हैं ताकि आप लोग शिफा पाएं। अब सिर्फ ईमान रखें और शक ना करें। घूमकर सीधे आएं, इसी रास्ते पर वापस जाएं। घूमकर सीधे आएं, वापस इसी कतार में लग जाएं। घूमकर सीधे आएं और एक बड़ी कतार बनाएं। इसी रास्ते से घूमकर सीधे आएं और एक ही कतार बनाएं। ये ठीक है। अब हर कोई दुआ में रहे और सचमुच अपने ईमान में कायम रहें और बिल्कुल भी लोगों पर ध्यान ना दें। याद रखें, हम यीशु की हजूरी में हैं। उसके कलाम पर गौर करें, जो काम उसने हमारे दरमियान किया है, डांप लिए गए हैं, इसलिए ये हम पर मुनस्सर है कि खुदावंद की इज्जत करें। ये अच्छी बात है, अब ये बिल्कुल ठीक होगा। मेरे ख्याल में वो कतार जो अंदर दाखिल हो रही है, वो बहुत अच्छी लग रही है। अब जबकि हम सब खड़े हुए हैं, अब मैं हर एक से जो इस इमारत में मौजूद है, चाहूंगा कि अपने सरों को झुका लें। खुदावन यीशु, ये सब जल्द होने को है, फैसला अभी ही हो जाएगा। क्या हम ईमान रखते हैं? खुदावंद यहाँ मौजूद हैं? क्या हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं? क्या हम में ईमान है कि हम खुदावंद से क्या मांगने जा रहे हैं? ये सब लोग कतार में खड़े होकर खुद की पहचान करवा रहे हैं। ऐ खुदावंद, अता करके ये लोग बेफायदा ना जाएं। खुदावंद, ऐसा हो कि जब ये यहाँ से गुजरें, तो हर शख्स इस तरह से गुजरे जिस तरह वो मसीह से गुजर रहा है, इसलिए कि हम जानते हैं कि तू यहाँ मौजूद है, और हम दुआ करते हैं कि वो अपनी शिफा हासिल कर लें। और मुझे यकीन है कि आने वाले हफ्तों में इन लोगों ने अपने खादमों के पास जाना होगा। वो खवातीन जिनको जनाना तकलीफ है या मेदे की तकलीफ है, और वो आदमी जिनके गदूद बड़े हुए हैं, और हर किस्म की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। सिर्फ यही कहें, आप जानते हैं कि वो बीमारी मुझे छोड़ चुकी है, क्योंकि मैं तेरी हजूरी में हूँ। अता कर कि जब वो इसमें से गुजरें और इस बात को जान लें कि तू इनकी खातिर मरा था, क्योंकि ये इब्राहिम की नस्ल से हैं, और जिनकी खातिर तूने फतह पाई है, अता करके जब वो आए और जो कुछ तूने उन्हें देने के लिए रखा है वो उसे हासिल करे। शैतान, तू जो इस हफ्ता में बहुत ही नमाया रहा है, अब इस वक्त तू जान ले कि तू एक शिकस्त खुर्दा मखलूक है। यीशु मसीह ने तुझे कलवरी पर शिकस्त दी थी, हमारी निजात के लिए वो तीसरे दिन जी उठा था, और वो अब हमारे दरमियान खड़ा है, और ईमान ही के वसीला से हम उसे देखते हैं, और जो कुछ तूने किया है कुछ भी हो खुदा से पोशीदा नहीं है। इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे। ठीक है, कतार बनाएं। हमने वही किया है जिस तरह मालिक ने हमें करने का हुक्म दिया। आप में से कितने हैं जो इस कतार में से गुजर कर ईमान रखते हैं कि हम शिफा पाने जा रहे हैं, वो अपने हाथ बुलंद करें। मैं भी खुद को आपके साथ शामिल करता हूँ। खादमों के ग्रोह की हैसियत से आखिर में हम क्या कर रहे थे, जबकि उनमें से बहुत सारे बीमार थे, मुझे ये मालूम था, मगर वो अपनी कोशिशों से अपनी जमात को अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। आया वो अंदर दाखिल हुए या नहीं, यही असल चरवाहे हैं। और रूल कुछ ने मुझसे कहा कि उन्हें मौका दे कि वो एक दूसरे के साथ यकदिल हो जाए। हम अपने दिलों को और जालों को फूलदार बेल की तरह एक साथ अपनी दुआओं से इकट्ठा करके सजाते हैं। यीशु उनको भी अच्छा करता है और उनको खुदावंत के कलाम में मजबूत चरवाहे बनाता है। मेरे भाइयों, खुदा तुम्हें तौफीक दे और खुदा आपके दिल की सारी तमन्नाओं को पूरा करे, और आप उम्र भर खुदा की कुदरत के साथ जो आपकी जिंदगियों में है इस बेहतरीन लोगों के ग्रो में उसकी खिदमत करें। अता करके यीशु मसीह जो हमारे साथ रहा है और हमेशा हमारे साथ है, वो पहले की निस्बत हमारे सामने ज्यादा मुमताज हो। आप लोगों में से कुछ जो अपाहिज थे, हो सकता है कि आपने एक लम्हा के लिए कोई फर्क महसूस ना किया हो, शायद आपने कुछ भी फर्क नहीं देखा, मगर देखें इब्राहिम ने क्या किया था। आप भी उससे कोई फर्क ना बने। ये ऐसा नहीं है जो आप अभी देख रहे हैं। आप अपनी बीमारी की अलामत पर निगाह ना करें, बल्कि उस बात पर निगाह करें जो उसने कहा था। अगर आप कहते हैं मुझे अभी तक दर्द है, मगर इस बात का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, आपने वही किया जो खुदा ने करने को कहा था, समझे। इस पर निगाह करें, इसे देखें जो उसने फरमाया, खुदा ने ऐसा ही कहा था, मैं इस पर ईमान रखता हूँ। क्या आप ईमान रखते हैं? मैं पूरे दिल से इस पर ईमान रखता हूँ। खुदावंद खुदा आपको बरकत दे, फिर दोबारा मुलाकात होगी। मेरी दुआएं आपके लिए हैं। रात बहुत ज्यादा नहीं हुई और बारिश भी बहुत ज्यादा तेज नहीं बरस रही। मुझे आपके लिए दुआ करनी है, आप मेरे लिए दुआ करें उस वक्त तक कि फिर हम दोबारा मिलें। खुदा आपको बरकत दे। अब पासवान भाई इबादत अपने हाथ में ले ले।